ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਰੋਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਂਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ
ਸੁਣੋ 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 ਕਰਾਂ ਦਿਓ ਮਾਲਕੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 4 ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫੀ ਉੱਤੇ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਿਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/rrl
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और 1 घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ ڈرائیو تھرو فیسلٹی ون اسٹاپ شاپ اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی کوئک ٹرک لیو 519-622-0660 quicktrucklube.com
کمیونٹی اناؤنسمنٹ الیکٹرانک موٹرائز ہاسپٹل بیڈ ڈونیشن کے لیے دستیاب ہے استعمال شدہ مگر بہت ہی اچھی کنڈیشن میں آپ کو یہ بیڈ ملٹن کے ایک گھر سے پک کرنا ہوگا مزید معلومات کے لیے کال کیجئے سمینہ طلعت 416-827-8544 416-827-8544
ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਮੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਾਰਪੋਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਪੋਰੋ ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਫੋਨ 416-264-3111
Teletime Electronics, LEDs और होम अप्लायंसेज की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA तो इंतजार कैसा अभी विजिट करें Teletime Brampton 280 Rutherford Road या Springdale Square Shopping Center या Etobicoke 1770 Albion Road या 9909 Markham Road مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس
जी सामने नाजरी वेलकम बैक अगेन एंड 6:04 और 43 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। अभी हमने शुरू किया था प्रोग्राम विथ 24 डिग्री टेम्परेचर, वेंट डाउन टू 23 डिग्री टेम्परेचर, जस्ट टचिंग 22, नाउ इज गॉन बैक टू 24। भाई लह गर्मियां आ ही गई हैं। सो नाइस टू सी गर्मियां वापस आ गई हैं। यहां पर जुमे का दिन है, जून की 21 तारीख, और अब ले चलेंगे हम आपको अपनी न्यूज की जानिब जिसको पेश करते हैं। ऑफकोर्स ये पूछने की बात ही नहीं है। अब्दुल माजिद जमाल एंड शाजिया मलिक। और साहब, दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हेयर मैक्स। शहराज रहीम यहां पर होते हैं, दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। और सब हेयर मैक्स में अगर आप या आपके घर में किसी की भी सुनने में कमी हो गई या हो रही हो, अगर आप हस्बैंड हैं तो परवाह ना करें उस चीज की, मगर अगर हो गई हो तो आप हेयर मैक्स के जनाब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शाजे कहती हैं, हेयर मैक्स के शिराज से आप कांटेक्ट कर लें। 4167928792 इनका फोन नंबर है। और साहब मैं बताऊं आपको कि कैलेडन सब्जी फार्म पे ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर अवेलेबल, रात की रानी, जैस्मीन, तुलसी एंड मच मच मोर। अगर आपने वेजिटेबल्स लेने हो तो बीन्स भी है, भिंडियां हैं, चिलीज हैं, टोमेटोज हैं, एग प्लांट एंड मच मच मोर। खाद बड़ी जबरदस्त देसी खाद आपको मिलेगी। वहां पर जाइए कैलेडन सब्जी फार्म पे, 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन में, 9058409000 इनका फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, यहां पर आपको डॉक्टर नाजिया रहमान मिलती हैं। और इनका कहना है कि फैमिली प्लेसेस कॉस्मेटिक्स एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, दो लोकेशन से आपको सर्व करती है। दोनों लोकेशन ब्रैम्पटन के इलाके में है। और आपको यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड इजी पेमेंट ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। डॉक्टर नाजिया रहमान, 9058721100 इनका फोन नंबर है। मेरे स्टूडियो में भी ना कोई बीमार लोग आ गए, खांसी की आवाजें आ रही है आपको तो ये मेरी नहीं है खांसी की आवाजें, कुछ बीमार लोग आ गए। मगर हमने एक पॉलिसी बनाई थी यहां पर एट द टाइम ऑफ कोविड के साहब, आपको जब भी खांसी आए तो आप मुंह पे हाथ रखें या इस तरह कर लें, मगर ये लोग ये ऐसे मरीज हैं कि इनको परवाह नहीं है। एनीवे, आप लोगों को कितना बिलीव है ये हाथ देखने वालों पे और साइकिक पे और ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन पर कितना बिलीव है? एस्ट्रोलॉजी कितना बिलीव है आपको? बहुत सारे लोग हैं बेइंतहा लोग, कुछ तो रिलीजन भी ऐसे होते हैं जो इन पे बिलीव करते हैं बहुत, दैट्स देयर रिलीजन, इफ दे बिलीव दैट फाइन। मगर इनकी बाज लोग जो है वो जिनको इल्म होता है ना तो वो तो फिर भी सही है, मगर बाज लोग जिनको इल्म वगैरह नहीं है मगर उन्होंने साहब अपनी दुकान खोली हुई है। मैं भी अपने ऑफिस के बाहर यहां एक हाथ बना दूं इस तरह, और हाथ के सामने जो है देखिए ये देखिए साहब, हाथ जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, ऐसा हाथ बना दें कि भाई आपके हाथ देख के मैं बता दूंगा आपको कि क्या होने वाला है। भाई अपने आप पहला खुद अपना बता दें क्या होने वाला है। एनीवे, एक साइकिक ऐसे हैं, इनका नाम है महादेव, महादेव देव भी नहीं है, महादेव है, सस्पेक्ट है ये। वो अपना साइकिक एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस रन करते हैं किंगस्टन रोड एंड मॉर्निंग साइड पे इन द एरिया ऑफ स्कारबेरिया। और यहां पर ये पता नहीं कितने केसेस होंगे इन पे, मगर कोई सामने नहीं आया। एक खातून, उन्होंने कहा कि मेरी आइडेंटिटी आप ना दें अभी तक, क्योंकि वो उनको बड़ी एम्बेरेस्ड हैं कि यार मैं कैसे बेवकूफ बन गई। वो उनके बच्चे हैं तो उनको ये उनके पास पहुंच गए किसी तरीके से। जब पहुंची तो उन्होंने देखा, उनको इनसे बातचीत की, उनसे उन्होंने कहा कि साहब आप पे तो है शैतानी, शैतान ने आप पे कब्जा कर लिया है, आप पे और आपके बच्चों पे शैतान ने कब्जा कर लिया है और वो कब्जा मुझे निकालना पड़ेगा, बड़ा डेंजरस काम है ये, तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो $10,000 ले आए आप। ये इन्होंने जब उसकी पूरी बातें सुनी, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं ना आपको, जब पूरी बातें सुनी इन्होंने तो उन्होंने कहा $10,000 लीजिए साहब, $10,000 इन्होंने उसको दे दिए। कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, फिर उसके बाद फिर उन्होंने 10,000 मांगे, फिर 10,000 मांगे। उन्होंने कहा जी बड़े क्लोज है अब, बहुत ही क्लोज है अब जो है ना ये शनाक मैंने ऑलमोस्ट पकड़ लिया है, बस आप परवाह ना करें, 10,000 और दिया है। $46,000 इन्होंने दे दिए। पता नहीं क्या कितना अच्छा सेल्समैन होगा ये शख्स। $46,000 इन्होंने जो है वो साइकिक को दे दिए। और जब दिए उन्होंने तो उसके बाद आखिरी जो हरबा था उनका, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, थोड़े सी जार्स होते ना, जो जार्स क्या बोतलें बोतल कह सकते हैं उसको, जार्स जो होते हैं, आप डॉलर स्टोर पर जाके ये जार्स, चार जार्स लेके आने हैं आपने, क्योंकि मैंने ये शैतान को पकड़ के इन जारों के अंदर बंद करना है। वाह भाई वाह, अब तो फाइनल नेल इन द कॉफिन ना। मगर इसके लिए मुझे आपको $20,000 देने होंगे। 46 तो पहले हो गए, 66 हो गए थे। तो वो खातून जो ना उस वक्त उन्होंने कहा कि अब मेरा ख्याल है कि कुछ मुझे काल में दाल में कुछ काला लग रहा है। तो इन्होंने जो है फिर सीटीवी के जो प्लेटफॉर्म है उसको कांटेक्ट किया और उन्होंने जो है जाके देखा, सब कुछ किया, पता लगा कि सब वो तो जगह बंद है आजकल। तो कहने की मेरी बात ये है कि आप अपने 30, 40, 50, 60 हजार डॉलर ना लूज करें और इन चीजों पे बिलीव ना करें तो बेहतर है। जो कुछ भी करना है, यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं इस चीज के लिए, साइकियाट्रिस्ट हैं, ये सब है। आप अगर कुछ फील करती हैं कि आपके पास, या करते हैं, मर्द हजरात भी पहुंचाते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे घर के पास एक प्लाजा है, तो वहां पर एक शख्स बाहर खड़ा रहता है, वो जो साइकिक साहब है वो तो अंदर होते हैं मगर ये सब बाहर खड़े होते हैं और आपके हाथ में नए फ्लायर्स दे रहे होते हैं कि अभी आपको बता देंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा उससे मजाक करता हूँ, दैट्स अ जॉब, मैं उनसे मजाक करता हूँ, कहते श्योर अभी बता देंगे मुझे। एनीवे डोंट फॉल इनटू ऑल दीज। शादी जी आप बिलीव करती हैं इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम, शुक्र है मजद भाई आपको मेरा ख्याल आ गया है। मैंने कहा आज तो कहानियां बस आपकी ही चलेंगी।
हाँ मैं तो यहाँ ये सुन के बड़ा हैरान हूँ।
ऊपर से आप मुझे धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी गिची दबा दूंगा और मर्द को। मजद भाई आप और आमिर और जीशान आप लोगों ने अपनी जान देखी है? मरी सी जान है, मुझे उठा के अगर आपने मेरी गिची मरोड़ दी
उसका
उठा के कैसे लेके जाओगे आप मुझे?
उसका उसकी वो नहीं ली हमने गारंटी, उठाने वाले दूसरे आएंगे।
हाँ ठीक है, आप तीन तो मुझे उठा ही नहीं सकते। हाँ,
हमने ट्राई नहीं करना।
हाँ ये उठाना ट्राई नहीं करना क्योंकि आपने मुझे उठाया तो आप खुद बैठ जाओ।
हाँ
खुद बैठ जाओगे,
पता लगा अभी रेटे में।
एग्जैक्टली तो ये जो है ना ये पंगे इस तरह के, ये जरा अपने सेहत वाले बंदों के साथ लिया करें। ये मेरे जैसे सेहत वाले बंदों के साथ आप जैसे जो है ना मड़ी सी जान वाले उनको नहीं लेने चाहिए पंगे। हाँ जी ऐसे ना करें,
ऐसे ना करें।
अच्छा आप जो है ना मैं सही, वैसे जब से मैं उम्र से वापस आई हूँ ना मैंने देखा बहुत खराब हो गए हैं। 10 दिन टोटल में आपको आमिर के पास क्या छोड़ के गई हूँ। आपका ना खून चेंज करना पड़ेगा, आपको फिर से सारा कुछ सिखाना पड़ेगा। पूरा भी एक साल लगेगा, आप जो है ना आप फिर अपनी, हाँ दोबारा से फिर आप जो है ना नई जगह पे आए,
रिफ्रेश
होके, रिवाइटलाइज होके। ठीक है अच्छा जी, अच्छा जी हम अपनी कहानियां भी फटाफट पा लें क्योंकि फिर उसके बाद हमारे बड़े टॉल टारगेट्स हैं जी। ओके दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी एंड बड़ी जबरदस्त किस्म की हर तरह की डेंटिस्ट्री की जो आपकी सर्विसेज हैं आपको ऑफर करते हैं। 3 इनके क्लिनिक्स हैं, तो आप अगर मिसिसागा में जाना चाहते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9052325678। स्कार्ब्रो में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें उनका नंबर है 4167579999। एंड दिस अमेजिंग मूवी उम्रो AR आज से लग गई है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, प्लीज जाएं इसको देखें, अपनी मूवी को सपोर्ट करें। और कल तो बड़ा फन रहा, हमने बहुत सारे जो है कोई 20 टिकट्स भी हमने दिए हैं, तो प्लीज जरूर आज जाएं और देखें, बहुत बड़े बड़े इसके अंदर सितारे हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है इंटरव्यूज भी इनमें से कुछ के सुने हैं। और जनाब राजा दे बादशाह जी वो कहते हैं जी मैं आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस देता हूं, आओ सही मेरे कोल तुसी, फिर मैं तुहानू दसना कितने थोड़े नहीं पैसे बहुत बचाते हैं ये। ठीक है जी, राजा बादशाह जी जो है इनका नंबर है 6472903773, ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं, तो जाएं और बहुत ढेरों सारे पैसे बचाएं। अच्छा जी मजे भाई, पहले तो मैंने सोचा और बड़ी इंपॉर्टेंट आज खबरें थी, पर जो आपके दिल का जो वो है ना दर्द, उससे मैं शुरू करती हूं खबर। ठीक है जी। ये जो ऑटो थेफ्ट में जो चार उन्होंने सस्पेक्ट्स पकड़े हैं और जो है गाड़ियां पकड़ी हैं, है जी 100 के करीब गाड़ियां स्टोलन पकड़ी हैं, और वो कहते हैं जी वही जैसे आप बता रहे थे अभी कि फॉर्मर सर्विस ओंटेरियो का बंदा जो था इनके साथ इन्वॉल्व था। अच्छा जी, अब कार्रवाई कैसी थी? खबर तो आपने दी है लेकिन मैं अब आपको कार्रवाई बताऊं कि ये कार्रवाई क्या। अच्छा, एक तो इन सारों के ऊपर तकरीबन 28 चार्जेस लगाए गए हैं इन्होंने। ये जो इन्होंने शुरू की थी इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम था प्रोजेक्ट पोचर, और ये जनवरी 2024 में स्टार्ट की गई थी, और इसकी आज डिटेल्स जो हैं ये इन्वेस्टिगेटर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ सस्पेक्ट थे, और ये वो जो फॉर्मर सर्विस ओंटेरियो का एम्प्लॉई थे उसको उन्होंने पे किया, और उन्होंने कहा जी कि तुम बिल्कुल नीट क्लीन हमको व्हीकल डॉक्यूमेंट्स और प्लेट्स और बिल्कुल जो है वो बना के दे दो, और विन नंबर्स चेंज कर दो, और दूसरे विन नंबर्स जो हैं इनके लिए जो है वो कर दो, यानी कि उस वो विन नंबर्स तुम हमें दे सकते हो, क्योंकि सर्विस ओंटेरियो के पास सारे हर किसी का होता है डाटा, होता है इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या करते थे कि जो लोग मर जाते थे ना फॉर एग्जांपल, तो उनकी कभी कोई गाड़ियां होती थी उनके विन नंबर्स ये इनको दे देते थे, और या तो फिर ये गाड़ियां जो थी इनको फिर अनसस्पेक्टेड बायर्स जो थे जिनको पता नहीं है बेचारों को ना कि ये चोरी की गाड़ी है या क्या है, या तो उनको बेचते थे या कि फिर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसको यूज करते थे, या फिर ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है ना माजिद भाई, उसमें ये गाड़ियां लगाते थे और उसमें बेचते थे। अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ एक दफा कि ये जिस वक्त ये इस तरह की एक गाड़ी कर रहे थे तो पुलिस जो है वो ये प्रोब कर रही थी सारा, और ये ढूंढ रही थी, कुछ रिव्यू कर रही थी जो डॉक्यूमेंट्स थे सर्विस ओंटेरियो की एक लोकेशन पे। जब उन्होंने सर्विस ओंटेरियो की उस लोकेशन में जब पेपर्स देखने शुरू किए तो उनको बहुत सारे अनोमलीज मिले उसके अंदर, बहुत सारे इररेगुलरिटीज यानी के थे। तो वो इररेगुलरिटीज जब उन्होंने देखने शुरू किए तो होते 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 उन्होंने जब डॉट्स मिलाने शुरू किए तो उनको फिर पता चला कि भई ये तो अंदर ही एक आदमी बैठा हुआ है और ये जो ऑटो थेफ्ट है इसमें इनको हेल्प कर रहा है, और इस तरह से फिर इन्होंने उस आदमी के थ्रू फिर वो चारों को पहुंचे और वो किए। अच्छा, ऑल टुगेदर जो ये जो गाड़ियां सारी 100 हैं इनकी ऑल टुगेदर वैल्यू जो है $9.5 million है, लेकिन इसके अंदर 21 जो थी लग्जरी व्हीकल्स थी, तो उन लग्जरी व्हीकल्स की जो प्राइस है दैट इज $1.8 million। तो आप सोचें जरा कि ये लोगों ने बेचारों ने किस तरह अपनी ये पैसे कैसे जमा कर करके गाड़ियां ली हैं ये इतनी एक्सपेंसिव, और ये जो है मजे से उसको चोरी करते हैं और लेके और बेच देते हैं और बाहर भेज देते हैं और ये करते हैं।
और, तो, और ये, ये जो है ये सर्विस ओंटेरियो वहां के एम्प्लॉयज अगर कोई भी एक भी अगर एम्प्लॉई उनके साथ मिल जाए
जी जी जी
तो इनका काम बड़ा आसान हो जाता
है। बड़ा आसान है, बिल्कुल
बड़ा आसान है, क्योंकि वो तो जब अगर मैं लेके जाऊंगा तो वो तो कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी कंप्यूटर में ऑलरेडी है तो वो आई कैन नॉट डू इट एंड दे कैन डू इट, अगर उनका एक एम्प्लॉई जो वहां पर वो करेगा तो उसके लिए तो आसान तरीका,
क्योंकि डेटाबेस है ना उसके पास सारा कुछ, सारा डेटाबेस है उसके पास, तो वो आराम से चेंज कर सकता है। अच्छा जनाब, इंडिया और जो कनाडा है ना उनके बीच में पसूड़ियां चलती जा रही हैं। कनेडियन फेडरल कोर्ट ऑफ अपील जो है उसमें दो जो सिख सेपरेटिस्ट यही जो है खालिस्तानी, इन्होंने एक अपील डाली थी कि हमारा नाम हटाओ नो फ्लाई लिस्ट से, लेकिन आज कनेडियन फेडरल कोर्ट ऑफ अपील जो है उसने इनकी ये रद्द की है अपील। ये जो थे दोनों, इनको सबसे पहले वैंकूवर में 2018 में एक फ्लाइट के ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद ये लोग जो है कनाडा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये जो अपील जिन्होंने डाली थी उनका नाम था भगत सिंह ब्रार और दूसरे जो हैं प्रभकर सिंह दुलाए वो हैं, और उन्होंने कहा जी कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जो है जा सकते हैं, हमारा नाम जो है नो फ्लाई जोन में से आप हटाएं। और तो कोर्ट ने आज कहा कि नहीं, आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था ये आपने लूज कर दिया है अंडर कैनेडाज सिक्योर एयर ट्रेवल एक्ट। इन्होंने रूलिंग जो आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो एक्ट है कनाडा सिक्योर एयर ट्रेवल एक्ट, ये एम्पावर करता है पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर को कि अगर वो किसी भी बंदे को बैन करना चाहता है या लोगों को बहुत सारों को बैन करना चाहता है ऑन ग्राउंड्स के वो सस्पेक्ट कर रहा है कि ये जो है थ्रेट क्रिएट करेंगे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के लिए भी और फिर मुल्क से बाहर जाके टेररिज्म कर सकते हैं तो उनको बिल्कुल रोका जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी, जाहिर है कि उन्होंने इनके साथ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ जो है ये सारी की सारी जो थी वो चीजें शेयर की थी और उसी के बेस पे ये सारा कुछ रूलिंग भी आई होगी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कहती है कि ब्रार जो है ही इज, अब देखिए ना, ही इज द सन ऑफ लखवीर सिंह ब्रार। ये लखवीर सिंह रोडे भी इसको कहते हैं। लखवीर सिंह रोडे जो है वो इनकी सिक्योरिटी इंडियन एजेंसीज के ऊपर इंडियन सिख सेपरेटिस्ट के तौर पे लिखा हुआ है। एंड ही इज द नेफ्यू ऑफ जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसने के वो जो गोल्डन टेंपल के ऊपर सारा वो जो किया था वो था और फिर उसको मारा था इंडियन, तो ये उसका नेफ्यू है भिंडरावाला का। और ये खालिस्तानी मूवमेंट वो चलाता रहा उधर इंडिया के अंदर। तो वो इसके अलावा जो है ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो है और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जो है उसके साथ भी ये जो है रिलेटेड है। दूसरा जो है प्रभाकर, वो उसको कहती है पैरी दुलाई। ये पैरी दुलाई जो है इसका भी ताल्लुक जो है ये रेडिकल देशमिश दरबार गुरुद्वारा जो सरी का है उसके साथ ये रिलेटेड है। और ये डायरेक्टर है कनाडा सिख कोएलिशन का। और ये जो थी कनाडा सिख कोएलिशन, ये 2008 में बनाई गई थी ताकि खालिस्तान के लिए जो है एक पॉलिटिकल सपोर्ट लाई जा सके। इसके साथ साथ ये जो दुलाई साहब हैं गुरप्रीत सिंह सहोता के साथ, ये एक यहां पे कनाडा में पंजाबी मीडिया जो है टीवी चैनल भी चलाते हैं जिसका क्या नाम है चैनल पंजाबी, तो उसके साथ भी ये रिलेटेड है। और इनके जो नाम है जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी ब्लैक लिस्ट के ऊपर है। और 2019 में ये दोनों जो थे ये फेडरल कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था हमारा नाम हटाओ। तो ये चीजें जो है ना ये बहुत संगीन होती जा रही है क्योंकि कोई ना कोई खबर जो है अब आती जा रही है इस सिलसिले में। कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे जो है उन्होंने जी पॉसिबल डिफेंस सिक्योरिटी जो है उसको डिस्कस किया है और ये कवर करेगी नॉर्दर्न अटलांटिक एंड आर्कटिक के एरिए। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो है बोरिस पिस्टोरियस, वो अर्लियर दिस मंथ जो है, लास्ट मंथ इनफैक्ट जो है, वो ओटावा में आए थे और उन्होंने एक लेटर जो था वो लिखा था बिल ब्लेयर साहब को, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि मैरीटाइम डोमेन जो है उसके अंदर हमको आपका कोऑपरेशन चाहिए। ये जो लेटर था इसको को साइन किया था नॉर्वेजियन डिफेंस मिनिस्टर जॉन ऑर्लिन ग्रैम ने। और उसमें उन्होंने कहा था जी कि हम जो है ये डिस्कशंस लेके जाना चाहते हैं कि हम इसमें सबमरीन जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे लेके जाएं। इसके ऊपर बात करते हुए बिल ब्लेयर साहब जो है उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल हमको ये लेटर मिला है, हम वेलकम करते हैं, हम ये रिसर्च और ये हम डिफेंस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सबमरीन का इसके अंदर जिक्र है और हमें अभी तक हमने अपनी रिसर्च नहीं की है कि अगर इस सबमरीन को हम बनाएंगे या उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी कितनी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि सबमरीन कोई सस्ती तो नहीं आती, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने कहा जी अभी इसके ऊपर हमने नहीं की। हालांकि आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है ये लिबरल पार्टी ने कहा था कि हमारी जो एजिंग फ्लीट है विक्टोरिया क्लास सबमरीन्स इनको हम अपग्रेड करेंगे। और जब पॉलिसी लेकिन जब रिलीज हुई थी तो ब्लेयर साहब ने भी और ट्रूडो साहब ने भी कहा था कि हम जो है खरीद तो लें हम नई जो है वो सबमरीन्स, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमको कहां पे और कैसे इन सबमरीन्स को यूज करना है। क्योंकि देखिए ना सबमरीन का एक बहुत स्पेसिफिक रोल है जो कि आप वॉर में यूज करते हैं। तो अब कनाडा को तो अल्लाह का शुक्र है अपने आसपास कोई वॉर नजर नहीं आती है, तो उनका यही कंसर्न था कि हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स क्यों करें जर्मनी और नॉर्वे के साथ। तो बिल ब्लेयर साहब ने वही कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं कि ज्वाइंट हम डिफेंस कोऑपरेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन जो सबमरीन वाला जो सेक्शन है उसमें शायद हम कोऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। तो ये आज उन्होंने बात की है। आज की एक बहुत बड़ी खबर जो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी तूफान मचा हुआ है। आपको पता ही है कि कुछ ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि रशिया से आजाद हुई थी, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारी, उसमें से जो ताजिकिस्तान है, जाहिर है कि ये सारी मुस्लिम स्टेट्स थी, इवन विद रशिया देवर मुस्लिम स्टेट्स। ताजिकिस्तान ने आज अनाउंस किया है कि हम जो ये हिजाब पहनते हैं इसको हम बैन कर रहे हैं और इस तरह के कोई भी जो रिलीजियस सिंबल्स आप जो है पब्लिक में डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर अब बड़ा बैकलैश आया है क्योंकि ताजिकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो ये पहनते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादातर इरेनियन डिसेंट के हैं, इरेनियन कल्चर को जो है वो फॉलो करते हैं, बल्कि इनका जो ताजिक लैंग्वेज है वो भी पर्शियन स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। ये ज्यादातर मुस्लिम सुन्नी मेजॉरिटी है ताजिकिस्तान में। 1994 में प्रेसिडेंट अमोमली रहमोन जब आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जितने एलियन क्लोदिंग है इसका डिस्प्ले पब्लिक में नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत सारे इलाकों में जहां पे कि क्रिश्चियन या दूसरे लोग हैं वहां पे तो इन्होंने ऑर्डर किया था कि नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती उन इलाकों में, क्योंकि उन लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं, और उन इलाकों में मस्जिद भी बनाने का जो इन्होंने कहा था कि हम हुक्म गवर्नमेंट नहीं देगी, और उन इलाकों में जो ईद की फेस्टिविटीज तक भी हैं वो भी आप नहीं मना सकते हैं। तो ये जनाब न्यू अब लॉ जो ये लेकर आए हैं, अपर हाउस जिसको कि ये कहते हैं मजलिसी मिली, उसके अंदर ये सारी चीजें लाए हैं। अब इसके ऊपर कितना बैकलैश आएगा वो तो अब मंडे तक हमें पता चलेगा, तो फिर हम आपको बताएंगे। अलबत्ता लोगों ने आज बड़े अफसोस का इजहार किया कि अगर मुस्लिम कंट्रीज में भी ये सब कुछ चलेगा, वो कहते हैं जी नहीं, हम बिल्कुल जो है सेक्युलर रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल कोई भी ये रिलीजियस सिम्बल्स को जो हमारा कल्चर के खिलाफ है उनको हम करना नहीं चाहते कि पब्लिक में वो चीजें आए, और ये जो हिजाब विजाब पहना है ये ताजिक कल्चर नहीं है, तो ये अरब्स का है। तो इस तरह से आज जनाब ट्रंप साहब जो है उन्होंने बहुत ही बड़ी और कॉन्ट्ररी टू हिज पॉलिसी जो है एक स्टेटमेंट दी है। आपको पता ही है कि इंतहाई एंटी ये इमिग्रेशन थे, वो वॉल बनाई उसके साथ जो है मेक्सिको के साथ, और कहा ये इलीगल लोग सूडान से अफगानिस्तान से नहीं आएंगे हमारे मुल्क में, ये बड़ी खराबी पैदा करते हैं। अच्छा जी, आज उन्होंने बहुत मेजर अनाउंसमेंट किया है। ट्रंप साहब ने कहा है जी कि हर वो फॉरेन बच्चा जो हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ता है, अगर पढ़ के डिग्री लेके बाहर आएगा तो उसी वक्त अगर मैं जीत के आया तो उसको ग्रीन कार्ड ऑफर कर दिया जाएगा। ऐसा ह्यूज चेंज, ह्यूज चेंज, ये तो बहुत बड़ा। कभी कभी कल ही कोई कह रहा था कि जी इमरान खान के अलावा यू टर्न्स कौन लेता है, ये देखो जरा कितना बड़ा।
दिस
इज ह्यूज न्यूज, ह्यूज न्यूज भाई। लोगों की जिंदगी अमेरिका में गुजर गई है ग्रीन कार्ड के इंतजार में।
हाँ।
तो ये तो पहला स्टेप है, जैसे हमारा पीआर कार्ड आता है फिर ही हम सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं।
जवाब में है जो बाइडेन साहब ने भी दो दिन पहले।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके रिएक्शन में है, जाहिर है कि अब इलेक्शन में आने वाली है ना नवंबर में, तो उसके लिए ये एक पॉडकास्ट कर रहे थे ऑल इन पॉडकास्ट, और उन्होंने कहा है जी कि मुझे पता है कि बच्चे बहुत सारे काबिल हैं और वो यहां पे हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तो अगर वो उनके पास अगर वो डॉक्टरेट की डिग्री फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर जो है जैसे ही वो पढ़ के निकलेंगे उनको जो है ये दे दिया जाएगा, ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अब इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसमें तो बहुत सारे जो ऐसे भी लोग आ सकते हैं यानी कि जो टेररिज्म के उसमें होंगे, पैसा तो उनके पास भी पड़ा है, उनके भी बच्चे पढ़। अच्छा, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन जो है इन्होंने दी है। ये जो है ये बात कर रहे थे बड़े प्रोमिनेंट जो टेक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं डेविड सैक्स एंड शमत पिलीहप्तिया, उनके साथ सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन इनकी साथ ही जैसे इन्होंने ये सैन फ्रांसिस्को में बात की तो इनकी कैंपेन स्पोक्स वोमन जो है कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा जी कि इतना भी मतलब एनडी भी अन्नी नहीं ऐसी पाई हुई, ये ग्रेजुएट्स जो हैं इनको स्क्रीन किया जाएगा ये देखने के लिए कि कहीं ये कम्युनिस्ट तो नहीं है, कहीं ये रेडिकल इस्लामिस्ट तो नहीं है, कहीं ये हमास सपोर्टर्स तो नहीं है, कहीं ये यूएस हेटर्स तो नहीं है। तो उसके बाद यानी कि वही होता है ना, एक फाइन लाइन होती है, पॉलिसी तो दे देता है लीडर, तो वो कहते हैं जी इन सब के लिए स्क्रीनिंग होगी और फिर स्क्रीनिंग के बाद ये सब कुछ दिया जाएगा। ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बेतहाशा गुस्से में हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में बेतहाशा स्कैंडल्स आते जा रहे हैं, और ऋषि सुनक साहब ने कहा जी कि मुझे पता चला है कि टोरी कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने बेटिंग की है उसके ऊपर, इलेक्शन डेट्स के ऊपर, जो कि बड़ी ही गलत बात है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। ये बात कर रहे थे बीबीसी के क्वेश्चन टाइम में, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हर किसी के ऊपर रेलेवेंट लॉ जो है वो एनफोर्स किया जाएगा, अगर उसने इस तरह की हरकतें की हैं कोई भी अगर रूल तोड़ेगा तो उसके ऊपर जो है रूल जो लॉ है वो अपना काम करेगा। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आप इन लोगों को सस्पेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा जी देखें अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक उनको गिल्टी नहीं किया गया, तो जब गिल्टी होएगा तो फिर हम पार्टी में से निकालने या रखने की इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो लोग सामने आए हैं वो एक तो है लॉरा सैंडर्स, ब्रिस्टल नॉर्थ वेस्ट की कैंडिडेट है, और शी इज मैरिड टू द उसी के जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ कैंपेन्स टोनी ली, उनके साथ ब्याही हुई हैं, और वो उनको अब किया जा रहा है, प्रोब किया जा रहा है गैम्बलिंग कमीशन की तरफ से। इसके साथ साथ जो पीएम के जो बड़े क्लोज पार्लियामेंट्री एड थे क्रेग विलियम्स जो टोरी कैंडिडेट थे मॉन्टगोमरी शायर एंड ग्लिनवर्ड से, उन्होंने भी एडमिट किया था कि ही हैज पुट फ्लटर ऑन इलेक्शन, यानी कि उन्होंने भी बेटिंग कुछ किया था। तो सुनक साहब के जो क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनको बहरहाल अरेस्ट किया गया है और उनको सस्पेंड किया गया है इसी बेटिंग के सिलसिले में जो उन्होंने की थी कि जी पोलिंग जो है वो किस टाइमिंग पे होगी, और इलेक्शन यानी टाइमिंग जो है इलेक्शन टाइमिंग के ऊपर किया था उनको, तो ये बेट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड जो मीडिया के सामने आई हैं ये लगाई गई थी May 21st को। तो सुनक साहब जो हैं वो एक तो ऑलरेडी भी पोल्स में भी अच्छा नहीं दिखा रहे हैं कि वो जीत सकते हैं और फिर अब ये सारे स्कैंडल्स भी आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है एक आज बहुत ज्यादा खलबली मची, उसकी वजह यह है कि एक लॉ लेके आने की वो कोशिश कर रहे हैं जिसको बेतहाशा आज यूरोप के अंदर ही क्रिटिक्स ने उसको क्रिटिसाइज किया है। यूरोपियन यूनियन कह रही है कि हम एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं जिसमें मैस स्कैन किया जाएगा जो प्राइवेट कम्युनिकेशन है या कि एनक्रिप्टेड मैसेजेस के जो एप्स हैं आपके फोन्स पे उसके लिए लोगों को, क्योंकि हम ये जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज का मटेरियल है और जो ये फैलाते हैं और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे फोटोज वीडियोज यूआरएल्स जो हैं वो पॉपुलर जो आपके एप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप और सिग्नल वगैरह उनको एक AI पावर्ड एल्गोरिथम जो है वो इसको स्कैन करेगा आपके डेटाबेस को और हम ये सारा अब्यूज मटेरियल जो है पता करने की कोशिश करेंगे। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है जो इस ब्लॉक की सेकेंड जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है तो उसने ये कहा है जी कि ये जो चैट कंट्रोल 2.0 जो है ये लेजिस्लेशन का नाम है इसको हम एनफोर्स करना चाहते हैं ताकि हम ये सारी चीजों को ट्रैक कर सकें। अब जो प्रिवेसी एडवोकेट्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो मैस सर्वेलेंस आप बिठा रहे हैं इसमें हमें जॉर्ज ऑरवेल का 1984 का नॉवल याद आ गया, उसका 1984 था उसके नॉवल का नाम जॉर्ज ऑरवेल का, कि जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजेस जो भेजे जाते हैं वो प्राइवेट होते हैं सेंडर और जो रिसिपिएंट होते हैं उसके बीच में, तो अगर आप इनको एनक्रोच करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ऑटोक्रेसी दिखा रहे हैं जिसका के जिक्र इनकी जॉर्ज ऑरवेल की किताब में है। तो ये ऑटोक्रेसी जो है आप ना करें, लेकिन जी बहरहाल अब ऑटोक्रेसी है कि नहीं है वो कह रहे हैं जी कि ये हमने जो है इनको गलत किस्म के लोगों को पकड़ना है तो उसके ऊपर ये सारी जो है बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू वेस्टर्न कैनेडा टूर 2024। ये डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा जो हैं ये कर रही हैं और ये जाएंगी अक्रम जोमा इस्लामिक सेंटर कैलगरी में, फिर उसके बाद पोलिश कैनेडियन कल्चरल सेंटर, फिर जो है उसके बाद फोर्ट मैकमरी इस्लामिक सेंटर में। तो अगर आप इनके ये लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं June 29th, 30th, July 2nd, 3rd and 4th को तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं @647388-4594 और जनाब और भी इनके बहुत सारे जो हैं वो लेक्चर्स हैं। और जनाब ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट फैसल चट्ठा साहब होते हैं, इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, आप दोनों में जाके वीकेंड है वैसे भी एंजॉय का मजा ले सकते हैं। एक तो इनका है मिसेस सागा में 4141 डिक्सी रोड, इसका नंबर है 9052323663 और दूसरा है लेक शोर रोड वेस्ट बे 2294 ओकविल में, तो इसको भी आप नंबर डायल कर सकते हैं इनको 9052262294। और जनाब पायल ज्वेलर्स सिंगापुर और दुबई से बड़ी जबरदस्त किस्म की ज्वेलरी लाए, दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर लें एट 9057907879। और जनाब सुल्तान भाई बड़े जबरदस्त किस्म के उनके पास जो है अप्लायंसेस होते हैं, तो अगर आपको सुल्तान भाई को भी मिलना है तो आप 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे जा सकते हैं ब्रैम्पटन में और उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये जो पाकिस्तान के अंदर हम आपको बता रहे थे कि जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस पार्टी ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लियू जियांग चाओ जो हैं वो आए हुए हैं कैनेडियन, ये चाइनीज मिनिस्टर, उन्होंने कहा है पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कि आपके मुल्क में जिस वक्त तक इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक आपके मुल्क के अंदर प्रोग्रेस भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा जी कि आपके जो अंदर के मामलात हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इन चैलेंजेस को आपको संभालना पड़ेगा और आपको बड़ा केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा कि ये जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो थे को चेयर कर रहे थे विद फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब थर्ड मीटिंग ऑफ पाक चाइना ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सीपैक, इसमें बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे, पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर, रऊफ हसन, पीएमएलएन के एसएन इकबाल, जमात इस्लामी के अमीर फजलुर रहमान, एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी और भी बहुत सारे लीडर्स यहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि बीजिंग ने बहुत सारी बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं सीपैक के अंदर, लेकिन कुछ अर्सा पहले जाहिर है कि ये काम थोड़ा सा रुक गया था सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा लियू साहब ने कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये उसी वक्त पॉसिबल होगी जिस वक्त आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं व्हेन दे जॉइन हैंड एंड दे एंश्योर पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं और फिर उसके लिए उन्होंने बड़ा कंसर्न भी शो किया कि जो उनके चाइनीज जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी। केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने अब शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल बड़ी सीवियर किस्म की वार्निंग दे दी है और उन्होंने कहा जी कि कॉन्सिक्वेंसेज आप संभालेंगे फिर अगर आपने 12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग की। उन्होंने कहा जी कि मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में ये जो बहुत लंबी लंबी पावर शॉर्टेज हो रही है उसकी वजह से लोग जो है सड़कों पे निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि आपको पता ही हमने बताया था कुछ दिन पहले ये केपी के ग्रिड स्टेशन में चले गए थे, उन्होंने कहा था जी कि 10 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज ये एक मीटिंग चेयर कर रहे थे जिसमें कि इनको बताया गया कि ये जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इससे अभी तक जो है वो उनके बातचीत चल रही है और इनको कहा गया है कि ये पावर कट इतनी ज्यादा ना करें। इसके अलावा जो है 1 बिलियन रुपीज जो है वो भी रिकवर किए गए हैं एक महीने में विद द हेल्प ऑफ केपी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी कि हमने अब जो इनको सारी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं पेस्को के स्टाफर्स और उनकी फैसिलिटीज यहां पे इनको दी जा रही हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो कहते हैं जी उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था ईद के मौके पे कि वो इतनी लंबी लोड शेडिंग नहीं करेंगे लेकिन फिर भी उन्होंने की और ईद के ऊपर ये कहा गया था कि 12-18 आवर्स की लोड शेडिंग जो थी वो थी। तो अब चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि केपी की गवर्नमेंट तो अपनी पूरी तरह से इन मामलात को संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको भी अपना हाथ डालना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक जो है उसका बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है उन्होंने आज कहा है कि हम पाकिस्तान को $535 मिलियन देंगे इन फाइनेंसिंग ताकि दो डिफरेंट इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो फाइनेंस किए जा सकें। इसके अंदर जो फाइनेंसिंग है फॉर क्राइसिस रेजिलियंस सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो हैं एंड एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उसके लिए ये दिए गए हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर 2022 में बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स आए थे, उसका बेतहाशा नुकसान हुआ था और इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि एक रेजिलियंट जो सोसाइटी है वो बनाई जा सके अगेंस्ट सच डिजास्टर्स ताकि उसका पहले से ही पता चल सके और ये जो सोशल प्रोटेक्शंस हैं इनको इन प्लेस किया जा सके। वो कहते हैं जी ये सब चीजें हम करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, रिकवरी आएगी क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये जो क्लाइमेट शॉक्स हैं इनको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखेगा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको हम ये फंड दे रहे हैं ताकि इफेक्टिवली रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है उसको ये फ्यूचर क्राइसिस से बचने के लिए इन प्लेस करें और अपने कंटिंजेंसी प्लान्स भी बनाएं कि इन दिस केस वो क्या कर सकेंगे अगर फ्लड्स और दूसरे नेशनल कलेमिटीज जो हैं वो आ जाते हैं तो क्या करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नेप्रा जो है जी उसने आज कहा है कि हम न्यू इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो है वो इम्पोज करने जा रहे हैं July 1st से और उन्होंने कहा जी कि हमने फिक्स कर दिए हैं चार्जेस ऑफ 200-1000 पर मंथ इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ 5 रेजिडेंशियल कंज्यूमर कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स पर मंथ। तो उन्होंने कहा जी कि वो लोग जो कि 300 से 400 यूनिट्स पर मंथ करेंगे वो फिक्स चार्जेस देंगे ₹200 पर मंथ, जो 400 से 500 यूनिट यूज करेंगे वो पे करेंगे 400, जो 500 से 600 यूनिट्स यूज करेंगे वो देंगे ₹600, जो 600 से 700 यूनिट्स वो ₹800 देंगे, जो 700 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनको फिक्स चार्जेस आएंगे ऑफ ₹1000 पर मंथ और कमर्शियल यूजर्स जो है जो कि 5 जो है किलोवाट की पावर यूज करेंगे वो पे करेंगे 2000 और ये जो है काफी उन्होंने इंक्रीज कर दिया क्योंकि पहले ₹500 था तो अब ये 300% इंक्रीज इसके अंदर आया है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं जो कि B1 कैटेगरी में आते हैं और 25 किलोवाट यूज करते हैं वो भी पे करेंगे 1000। इसके अलावा B2 कैटेगरी के जो यूजर्स हैं और 500 किलोवाट यूज करेंगे उनके फिक्स चार्जेस भी बढ़ाए गए हैं 300% से तो वो भी 2000 पे करेंगे। तो यानी कि ये वो कह रहे हैं जी कि हम फिक्स करते हैं ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो और जो कम यूज कर रहा है बिजली उसके कम रेट आए। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है उसने आज FBR को और फाइनेंस डिवीजन को कहा है कि ये जी आपने जो बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए हैं हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर इसको आप फौरन वापस लें। उन्होंने कहा जी कि जो सेल टैक्स आपने बढ़ा दिया है 8.5% जो पहले था अब उसको 25% कर दिया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपकी कमिटमेंट जो आपने की थी अंडर ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021-26 और आपने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स की तरफ जाना चाहती है, उसकी वजह से बहुत सारे जो ऑटो मेकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी स्विच कर दिया है हाइब्रिड ईवीज की तरफ और दूसरे बहुत सारे भी प्लान कर रहे हैं। आपके ये हाई सेल्स टैक्स जो हैं ये प्रॉपर कंसल्टेशन से नहीं हुए हैं और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये इन्वेस्टर इनको डिस्करेज करेंगे और जेपर्डाइज करेंगे और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स भी ये हाइब्रिड ईवी टेक्नोलॉजी में नहीं आएगी, क्योंकि ऑयल के ऊपर अगर डिपेंडेंस कम करनी है तो ईवी कार्स लानी पड़ेंगी, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए अगर आपने इतना ज्यादा जो है इसके ऊपर लगा दिया सेल्स टैक्स जो है तो फिर लोग जो हैं वो डिसहार्टन होंगे और हाइब्रिड व्हीकल्स नहीं बनाएंगे। तो ये प्रपोजल जो है आप इसको वापस लें। पीपल्स पार्टी की जो शाजिया मरी हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर रही है, और आपको पता ही है कि इनकी लड़ाई जो थी पीएमएलएन और पीपीपी की बजट के ऊपर चल रही थी, जो कि पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने और पीपीपी ने उसके ऊपर बड़े ऑब्जेक्शंस किए थे और उन्होंने कहा था कि इसको तैयार करने से पहले हमसे बिल्कुल पूछा नहीं गया, हमको कंसल्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो आपको पता ही हम आपको बता रहे थे कल प्राइम मिनिस्टर और बीबी जरदारी के बीच में मीटिंग्स हुई थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इनको एश्योर किया था कि जो भी आपकी राय होगी वो हम बजट के अंदर शामिल करेंगे। मरी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये टॉक्स जो है बड़ी कोई सब्सटेंशियल तो नहीं रही, लेकिन हम टॉक्स के ऊपर बिलीव करते हैं और हम जो है मीटिंग्स करते रहेंगे, लेकिन हम जो ये बातचीत कर रहे हैं इसको ब्लैकमेल ना समझा जाए, हम बड़ा पोलाइटली अपने कंसर्न्स उनको बता रहे हैं। अलबत्त प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी कि ये दोनों के बीच में जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर और बीबी जरदारी के बीच में बड़े ही प्लेजेंट एनवायरमेंट के अंदर हुई थी और दो कमिटीज बनाई गई हैं और म्यूचुअल कंसेंट से ये सारे मामला जो हैं वो तय किए जाएंगे। इसके अलावा जनाब बीबी जरदारी साहब जो हैं आज सिंध में थे और उन्होंने वहां पे अनाउंस किया है कि फ्री सोलर एनर्जी जो है वो रेजिडेंट्स को दी जाएगी टू अलिविएट लोड शेडिंग। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मेरे से वादे किए हैं जो पीपीपी के लिए और कराची और सिंध के लिए, मुझे लगता है कि वो बात पूरी अपनी करेंगे। आज लियारी के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बर्थडे ये मना रहे थे, उस सिलसिले का एक इवेंट हो रहा था जिसमें कि ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये पीपीपी की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है कराची के साथ कि हम तमाम किस्म के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करके इस सिटी को अच्छा बनाएंगे। हमने दो मिलिट्री डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ाई की है और हम जो है हमेशा सिटी के रेजिडेंट्स को सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम सिटी के अंदर डेवलपमेंट लाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने भी और मेरी मां ने भी ये जो कराची सिटी है यहीं से अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं उनको कहा जी कि जो कराची के इश्यूज हैं उनके ऊपर आप नजर रखें, और उन्होंने तारीफ की मुराद अली शाह और उनकी टीम की और उनको कहा जी कि ये जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के और ये सारे जो थे उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर गए हैं। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 16-18 आवर्स की लोड शेडिंग है जो कि बड़ी बैड है। वो कहते हैं जी अपकमिंग जो बजट सिंध का आएगा उसके अंदर हम गरीब लोगों को फ्री सोलर पावर के जो पैनल्स हैं वो देंगे और दूसरे लोगों को सब्सिडीज देंगे ताकि वो पावर जो है अफोर्ड कर सकें। तो ये जनाब बात थी। अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर तो वही स्यापे हैं, एक ही स्यापा है आजकल कनेडा है जी, ठीक है। अच्छा, आज जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने फिर से आज कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा जो है एतराज किया है। इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो है स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी बुरी नजर से देखते हैं जो कि कनाडा की पार्लियामेंट में अभी हुआ है। हुआ यह था कि जून 18 को कनाडा का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे एक मिनट का साइलेंस किया गया था ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हरदीप सिंह निज्जर की जो किलिंग हुई थी उसमें। तो इसके ऊपर जो है रणधीर जायसवाल ने बात करते हुए कहा कि ये कॉन्स्टेंटली कनाडा जो है प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं इनको स्पेस दे रहा है और हमने बड़ी दफा इनको बताया है कि आप इनको स्पेस ना दें, ये टेररिस्ट हैं और इनको जो है हम बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, हमारी वांटेड लिस्ट में है। ये वाकयात सिर्फ एक वीक के बाद हुए हैं जिसमें के ऑन 13 जबकि जो है 39th एनिवर्सरी ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो जिसमें के बॉम्बिंग जिसके ऊपर की गई थी June 23rd 1985 में, उसकी जो है एनिवर्सरी ये मनाई जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था। इस फ्लाइट के ऊपर 329 लोग थे और इसका नाम था एम्परर कनिष्का जिसको के जो है टेररिज्म का निशाना बनाया गया था, ये फ्लाइट जो थी ट्रेवल कर रही थी मॉन्ट्रियल से मुंबई वाया लंदन एंड न्यू दिल्ली, और ये वाक्या जो था एविएशन हिस्ट्री की जो डिजास्टर्स हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट माना जाता था टिल 9/11 अटैक्स जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे यूएसए के अंदर। तो जसवाल ने कहा जी कि हमने बार बार कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा है कि ये बड़ा सीरियस मैटर है और आपके मुल्क में खालिस्तानी एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा हो रही हैं, और हमारा जो हाई कमीशन था वहां पे कनाडा में वो तो इसका जो है अफसोस का दिन मनाने वाला था जिस वक्त आपने वन मिनट का जो है वो साइलेंस लिया है एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के लिए। तो ये बातें जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इस जिस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सारी बातें कर रहे थे कनाडा के ऊपर, तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि भाई ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है वो भी एक जो है फोर कॉर्नर्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आई है, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे यहां पे जो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स जो हैं वो आते हैं, और 2020 में उनको ऑस्ट्रेलिया से वापस जाने की बात की गई थी, और इसी तरह निखिल गुप्ता जो हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके ऊपर बात करते हुए जसवाल ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये जो बनाई है डॉक्यूमेंट्री ये फुल ऑफ लाइज है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये बिल्कुल जो है हमें ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं टेररिज्म जिसको कि हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते हैं, इसके अंदर ब्लेटेंट अनट्रूथ्स हैं और ये बायस्ड है। इसके साथ साथ जब उनसे निखिल गुप्ता के बारे में पूछा गया जो कि जिसका कि वो पूरा जो प्लॉट फॉइल कर लिया था एफबीआई ने, जो कि मर्डर टू हायर प्लॉट था टू किल गुरप्रतवंत सिंह पन्नू, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी अभी तक जो हमारा जो एम्बेसी है अमरीका में उसमें इन्होंने कोई काउंसलर एक्सेस मांगने की गुप्ता साहब ने कोशिश नहीं की है, लेकिन फिर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उनकी फैमिली के साथ इन टच है, तो हम जो है उस पर बात करेंगे। बाला जी ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा डीप हो रही हैं और ये सीरियस अब होती जा रही हैं, और कनाडा जो है उसको तो अब इंडिया की काफी बैशिंग मिल रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक किताब आई है, रक्षिंदा जलील है इन्होंने ये किताब लिखी है लव इन टाइम ऑफ हेट इन मिरर ऑफ उर्दू, जिसके के अंदर उन्होंने इस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर उर्दू जुबान के बारे में जो प्रेजुडिसेस हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स अब हो रही है उसके ऊपर बात की। इसके अंदर जो लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर साहब वो भी मौजूद थे, और फिर कांग्रेस के लीडर अभिषेक सिंघवी भी इसमें थे, और इसके अंदर उन्होंने यही बात की गई जो ये जलील साहिबा हैं वो कहती हैं मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई थी लेकिन कभी भी हमने बहुत ज्यादा इस्लाम 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 नहीं किया था, हम लोग सारे मिलजुल के रहते थे, लेकिन इस वक्त जो है हम जो मुसलमान हैं बहुत खतरे में रह रहे हैं। हम मुसलमान थे, हम खाते क्या थे, हम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, तो उसका किसी के ऊपर कुछ असर नहीं होता था, लेकिन अब का हिंदुस्तान जो है वो बदल रहा है। इसके ऊपर बात करते हुए जावेद अख्तर साहब ने कहा कि हाँ प्रेजुडिसेस तो हैं लेकिन हमको एक इनटॉलरेंट सोसाइटी होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान जो है एक पानी की तरह है, वो पानी की तरह बहता है और पानी जहां पे भी जाए वो अपनी शक्ल ले लेता है, तो आपको हिंदुस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके सेक्युलरिज्म के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी बात की जलील साहबा ने कि मैं जिस वक्त पैदा हुई थी 1963 में ये वो साल था जब नेहरू साहब अभी जिंदा थे, और उसके एक साल के बाद नेहरू साहब की डेथ हुई थी, तो वो कहते थे जी कि मैंने तो नेहरू की का जो सेक्युलर इंडिया था उसके अंदर कांख खोली थी, लेकिन इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए इधर हीट पैदा कर दी गई है। इसके ऊपर बात करते हुए कांग्रेस के लीडर अभिषेक झंगवी जो है उन्होंने कहा जी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात करता था, और दुनिया का वाहिद कंट्री था इस अर्थ पे, वो कहते हैं अगर एक कोई कंट्री था जहां पे के ये एथिक सेक्युलरिज्म के प्रिजर्व किए गए थे तो वो हिंदुस्तान था, लेकिन ये चीजें आपके डीएनए में होनी चाहिए तभी आप आगे लेके जा सकते हैं। यानी कि डीएनए क्या है किसी मुल्क का? फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम देख रहे हैं वाकई कि ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो इरोड हो रही हैं, लेकिन ये अब नहीं हुई हैं 75 इयर्स में, हमने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा डिवैल्यू किया है, और जैसे जैसे आप डिवैल्यू करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को फिर उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी आती है और अब्यूज भी आता है। तो कहना ये है, कहना का मतलब है वे कि जी हिंदुस्तान में इनटॉलरेंस जो है आ रही है, और उसका जिक्र आप इंटेलेक्चुअल्स भी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, खुश हो तुम। अच्छा जनाब, अनु मलिक साहब जो हैं आजकल अपनी फिल्म जो है हमारे 12 उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके अंदर किसी ने उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा कि कंगना रनावत साहिबा को अभी किसी ने थप्पड़ मारा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो पहले तो उन्होंने कहा कौन कंगना रनावत, कोई हीरोइन है, कोई बड़ी खूबसूरत है, कौन है? तो उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ वो मंडी से जो अभी बनी है एमपी बनी है, वो कहते हैं अच्छा अच्छा वो भी है वो, अच्छा वो सब कुछ ही है, तो अब तो वो बड़ी पावरफुल हो गई होंगी। तो फिर लोग उधर जब फंसे तो कहने लगे कि हाँ भाई उनको जरा लीगल एक्शन लेना चाहिए उस लेडी के खिलाफ जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा था, अगर मैं होता तो मैं तो यही करता था। लेकिन लोग बड़ा से जब उन्होंने कहा कौन कंगना रनावत ऐसे जो है। अभी एक नया इंटरव्यू आया जी जिसमें कि दिलजीत दोसांझ साहब से पूछा गया कि तुम्हारा जो गाना था लवर वो तुमने करण जौहर को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया, कितने में दिया? उसने कहा जी मैंने उसके लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं किया, मैंने फ्री उसको दे दिया, इसलिए कि करण जौहर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, मैं तो करण जौहर को जानता नहीं हूं, तो उसको मेरा गाना अच्छा लगा तो मैंने कहा भाईजान यूज कर लो अपनी फिल्म में, वो मुझे कितने पैसे दे देता, मैं कितना अमीर उससे हो जाता एक गाने के पैसे लेके, तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई भी पैसे जो है वो यूज नहीं किए। अनुराग कश्यप जो है उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अभय देओल के साथ डेव डी इन 2009, लेकिन उसके बाद से इन दोनों ने कोई फिल्म में काम नहीं किया। तो अभय देओल ने तो बड़ी दफा कहा कि अनुराग कश्यप अच्छा आदमी नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव है, ये बड़ी बातें की। अनुराग कश्यप ने कहा जी मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने भी बातें करनी शुरू कर दी तो फिर अभय शक्ल दिखाने के काबल कहीं पे नहीं रहेगा। और उसने बड़ी दफा मुझे कहा है टॉक्सिक हूं मैं, टॉक्सिक हूं ठीक है ये उसकी स्टोरी है, लेकिन मेरी पार्ट ऑफ द स्टोरी आपने नहीं सुनी, और अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो इसके अंदर इतनी करेज नहीं है कि वो बातें वो सुन सकेगा।
क्या बात है।
हाँ जी, तो पाया ने तो लड़ाई बड़ी तेज हो गई है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है जी ये है। और जनाब पैट कमिंग्स ने हैट्रिक लिया और डेविड वार्नर ने बनाए 53 नॉट आउट, जिसकी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया बांग्लादेश को बाय 28 रन्स इन सुपर 8 T20 वर्ल्ड कप का जो क्लैश चल रहा था एंटीगुआ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जनाब अब वो चाहता है कि वो तमाम टाइटल्स ही ले ले, जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 भी अब ये जीतना चाहता है। इन्होंने जो थी बारिश इधर शुरू हो गई थी, बांग्लादेश जो थी उसने 140 for 8 बनाए थे, लेकिन अंडर डकवर्थ लुई फॉर्मूला इन्होंने 100 बनाए थे फॉर 2 इन जस्ट 11.2 ओवर्स, तो उसकी वजह से इनको एज था बांग्लादेश पे, जिसकी की वजह से इनको जिताया गया। लेकिन एज कुछ नहीं होता, आखिरी बॉल तक आपको, आखिरी बॉल पे हमारे मियां दादे छक्का मारा था ना, फिर पाकिस्तान जीता था ना, तो ये नहीं होता। लेकिन बहरहाल जी ये कहते हैं जी पता नहीं केड़ा डक सिस्टम है। और जनाब लोग समझ रहे हैं कि शायद सानिया मिर्जा जो हैं इंडियन क्रिकेट मोहम्मद शामी उनके साथ शादी कर सकती हैं, क्योंकि इन दोनों की ही बड़ी तस्वीरें आजकल वायरल हुई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर शादी के कपड़ों में। तो लोगों को लगा कि चूंकि अब इसकी भी शोएब के साथ शादी जो हुई थी 2010 में वो खत्म हो गई है, इनका वैसे एक बेटा है इजान, तो ये जो है शामी जो है उसकी भी अपनी जो बीवी है हुसन जहां उससे सेपरेशन हो गई है, उसने शादी की थी 2014 में, तो अब उसका भी एक बच्चा वैसे, तो वो समझते हैं कि अब दोनों ये जो हैं अब चूंकि अपने उनसे अलहदा हो गए हैं तो शायद ये शादी कर रहे हैं। लेकिन जी सानिया मिर्जा के वालिद साहब जो हैं इमरान मिर्जा वो आज सामने आए और उन्होंने रबिश की सारे ये इनको ये जो है क्लेम्स, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी कोई इसके साथ शादी नहीं कर रही, अलबत्ता सानिया के बारे में पता चला है कि वो हज के लिए आजकल गई हुई हैं, तो वहां से इनकी तस्वीरें भी आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा ये सब गलत है, तो मेरे बेटे के बारे में ऐसे ना फिराओ। और जनाब बिग बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है उनको कैटेगरी ए से डिमोट किया जा सकता है इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीसीबी बिकॉज ऑफ देयर बैड परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप, और ये दोनों जो है अंडर टाइट स्क्रूटनी रहेंगे। और पीसीबी जो है उसने कहा है जी कि ठीक है इनको शायद डिमोट किया जा सकता है, लेकिन इनकी सैलरीज के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। शेम मसूद है उनको जो है रेड बॉल का कैप्टन रखा जाएगा और वो लीड करेंगे ये जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश। मसूद और हेड कोच जेसन गिल्स भी जो हैं और सिलेक्शन कमेटी जो है वो अब पाकिस्तान स्क्वाड को सिलेक्शन के लिए उसमें बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ आज बाबर आजम ने यह भी कहा कि वो लीगल एक्शन ले गए उन तमाम यूट्यूबर्स और फॉर्मर प्लेयर्स के लिए जो एक्यूज इनको कर रहे थे फॉर मिसकंडक्ट इन T20। तो उन्होंने कहा पायनून में अच्छा नहीं खेड़िया उन्हें तेना ना करो मैनू अब्यूज से ना करो तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं। और जनाब वहाब रियाज साहब सिलेक्शन कमेटी का हीरा, ही इज ऑल्सो अंडर स्कैनर और हो सकता है कि उनको जो है सिलेक्शन कमेटी से अब निकाल दिया जाए माशाल्लाह से, जिस तरह
अभी तो आए थे।
हाँ अभी आए थे, बस उन्होंने कहा दिल नहीं लग रहा मेरा T20 वर्ल्ड कप की जो वो हुई है। अकॉर्डिंग टू ESPN क्रिक इन्फो वो कहते हैं जी कि पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी वो जो हैं बड़े खफा हैं और वो कहते हैं जी कि कोई भी अगर खराब खेल खेलेगा तो नोबडी इज इम्यून टू एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, एंड कॉन्सिक्वेंसेज वो कहते हैं जी कि ये दोनों वैसे भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि पब्लिक का बैकलैश बहुत ज्यादा हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के हेड कोच गैरी क्रिस्टन जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि सिर्फ वो लोग टीम में रहेंगे जो यूनिटी, फिटनेस और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर जो है वो यकीन रखेंगे। क्रिस्टन ने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है उसे अकॉर्डिंग टू न्यूज के वो ड्रेसिंग रूम में उनके साथ बात कर रहे थे आफ्टर देयर एग्जिट इन फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स को फिटनेस जो है उसके ऊपर जोर देना चाहिए और उन्होंने कहा कि तुम लोगों की फिटनेस अप टू द मार्क नहीं है जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की होती है और तुम लोगों का स्किल लेवल भी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनके स्किल लेवल जैसा नहीं है। तो उसके बाद बड़े गुस्से में गैरी क्रिस्टन ने कहा अकॉर्डिंग टू मीडिया न्यूज के तुम लोगों ने इतनी क्रिकेट गेम्स खेली हैं और अभी भी तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा तुमने शॉट खेलना है और कब खेलना है तो विच शोज के तुम्हारे अंदर लैक ऑफ स्किल है। तो बड़ा खींचा जी इन्होंने गैरी क्रिस्टन ने जो कि अच्छा है खींचना चाहिए। और जनाब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो अपकमिंग 2 मैच टेस्ट सीरीज है उस वो तो अब शायद कराची और लाहौर में नहीं होएगी मगर ये सीरीज जो अगस्त में है ये जो है हो सकती है पिंडी और मुल्तान स्टेडियम्स में। उसकी वजह यह है कि कराची और लाहौर के जो स्टेडियम्स हैं उसके अंदर अपग्रेडेशन का वर्क चल रहा है फॉर अपकमिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। तो रावलपिंडी और मुल्तान में ये दोनों खेल सकते हैं दोनों मैचेस टेस्ट मैचेस और अभी जो है वैसे दोनों जो बोर्ड्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वेन्यूज को। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन मीडिया का ख्याल है कि शायद यही दो वेन्यूज रहेंगे। और जी आज साउथ अफ्रीका ने विन किया इंग्लैंड के नहीं कल किया था वैसे तो साउथ अफ्रीका ने विन किया 7 रन से इंग्लैंड के खिलाफ एट डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रॉस आइलैंड सेंट लुचिया इन मैच 45 और इंग्लैंड जो था उसने टॉस जीता था एंड दे ऑप्टेड टू बैट। साउथ अफ्रीका ने बनाए 163 for 6 इन 20 ओवर्स और इंग्लैंड जो है उसको इन्होंने आउट किया 156 for 6 पे। और अभी 8:30 बजे जी मैचेस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज वेस्ट इंडीज और मेरा प्रेडिक्शन है कि इसके अंदर वेस्ट इंडीज जीतेगा। ठीक है जी बहरहाल हम आपको बताएंगे जिस वक्त ये नीचे शुरू होंगी। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज स्पेन ने बीट किया है रेनिंग यूरोपियन यूनियन के फुटबॉल चैंपियंस इटली को 1-0 से इन ग्रुप बी मैच इन यूरो 2024 मैच एट गेलसेनकिर्कन जर्मनी में। इटालियन डिफेंडर रिकॉर्डो कैलाफियोरी जो है उन्होंने 55th मिनट में ये किया था गोल किया था। आफ्टर 2 मैचेस स्पेन जो है अब टॉप ऑफ जो है वो ग्रुप बी है विद 6 पॉइंट्स और इटली जो है उसके पास भी 3 पॉइंट्स हैं फ्रॉम 2 मैचेस। अल्बेनिया और क्रोशिया के पास जो है 1-1 पॉइंट्स हैं फ्रॉम 2 मैचेस और मंडे जून 24th को स्पेन अब अल्बेनिया के साथ खेलेगा और इटली जो है वो खेलेगा क्रोशिया के साथ। ठीक है जी फाइन खुश हो तुसी
हो गए जी।
हाँ जी हाँ जी कहानी होगी सारी
श्योर
हाँ बिल्कुल कहानी
हमारे पसंद
हाँ हाँ
ओके जी
बिल्कुल
जी हो गया जी हो गया
बाकी
खबरें इंशाल्लाह कल फिर
कल नहीं नहीं कल नहीं हमारे मजे में 2 दिन की छुट्टी आई एम नॉट
फीलिंग सही है इनको 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं
यस
और मंडे को इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने आएंगे खबरें लेके
मारिया तुसी मेनू काटे
मगर
मुंह शू मेरा लाल कर दिया बोरी में डाल डाल के मार मार के और वैसे भी अदरवाइज मेरी गिचियां मरोड़ मरोड़ के मैं नहीं आ रही 2 दिन।
ओके जी ओके आराम करो जी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ मगर आपने जाना नहीं है अभी कहीं क्यों क्योंकि अब तो शुरू हो रहा है क्रिकेट के मुतालिक सारी बातें होंगी आमिर होंगे यहां पर जिशान होंगे शाजिया होंगी ये सब आपको एंटरटेन करेंगे टिल 9 o'clock। उस अभी कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं प्रोग्राम में वापस आएंगे। थैंक यू शाजिया जी
थैंक यू सी यू नाउ ऑन ओनली ऑन मंडे प्लीज
ओनली ऑन मंडे डोंट प्लीज डोंट कॉल मी
ओनली एंड ओनली
डोंट यू गो अवे विल बी राइट बैक।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
اوئے ایک بلاک بسٹر پلان بنائیے पूरी मस्ती मजे नचना गाना हो जाए।
ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਰੋਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਂਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 4 ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫੀ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/RRL।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।